لنهتديا لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات الله
اللهم صل على محمد
دین مبین اسلام کی تمام ارزشیں تمام وسعتیں تمام کارگزاریاں اور تمام احکامات صرف اور صرف اس کا ہدف یہ ہے کہ انسان کو انسانیت کے اعلیٰ ترین اور بالا ترین درجے پر پہنچا دے. اللہ کی بارگاہ میں عبد اور معبود کا رشتہ برابر ہے. اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کا رہنے والا بندہ تو نزدیک ہو اور نیپال کا رہنے والا اس سے دور. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ داری والا حساب کتاب نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. اب کچھ مقرب ہو گئے اور کچھ دور ہو گئے, اس کی بنیاد کیا ہے؟ کسی بھی انسان کو میڈل دینے کے لیے, انعام دینے کے لیے, ٹرافی دینے کے لیے, کسی اوارڈ کو دینے کے لیے محبتیں کام نہیں آتی ہیں بلکہ اس کا امتحان کام آتا ہے. اگر کسی کو ایتھلیٹکس میں دوڑ میں میڈل دیا جا رہا ہے تو کسی کو گولڈ میڈل کیوں دیا جا رہا ہے, کسی کو سلور کیوں دیا جا رہا ہے, اور کسی کو برونز اور کسی کو کچھ بھی کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ اب کہا جائے کہ سرکار آپ نے ایک 19 سال کے لڑکے کو میڈل دے دیا اور وہ بیچارہ 35 سال سے محنت کر رہا ہے, اس کو نہیں دیا. کہا دیکھیے یہ 19 سال اور 35 سال کی محنت کام نہیں آئے گی, جو دو نشان لگے ہوئے یہاں سے لے کے وہاں تک, اسٹارٹ پوائنٹ اور ایمپٹی پوائنٹ, فنش پوائنٹ, اس کے بیچ میں جو دوڑے گا اور پہلا آئے گا اس کو انعام ملے گا. اب اس میں یہ نہیں کہ یہ 19 سال سے محنت کر رہا ہے اس کو مل گیا, اور وہ 35 سال سے بیچارہ محنت کر رہا تھا اس کو نہیں دیا. تو معیار یہ نہیں ہے کہ وہ 19 اور 35 کا ہے, نہیں, بلکہ معیار وہ جو امتحان لیا جا رہا ہے وہ ہے. بچوں کا امتحان لیا جاتا ہے. اب کہیں کہ ٹیچر سے کہیں کہ بھئی آپ کہاں اور یہ بچہ کہاں, تو ٹیچر کہے گا میں وہ تھوڑی امتحان لے رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے, میں اس کا امتحان لے رہا ہوں جو اسے پڑھایا ہے.
سبحان اللہ.
ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضور ذرا میرے ساتھ میرے بچے کے اسکول ہو کے آتے ہیں. ٹیچر نے نمبر نہیں دیے. بھائی 0 ہی دیتا, کچھ تو دیتا. اس نے کہا میں نمبر نہیں دوں گا. اب پہنچے صاحب تو ٹیچر بولا صاحب آپ کا بچہ بڑا قابل ہے, میں نمبر نہیں دے سکتا. یہ کاپی آپ کے سامنے, آپ دونوں مل کے نمبر دے دیجیے. اب جو پرچہ دیکھا तो बिल्कुल सवाल की जगह सवाल और जवाब की जगह इतनी बेहतरीन मेडिसिन लिखी हुई जैसे डॉक्टर्स लिख देते थे ना, आम आदमी जो है प्रेस्क्रिप्शन को नहीं पढ़ सकता। तो उस बच्चे ने वही किया था कि हर सवाल का जवाब लिखा था, लेकिन इस तरह से कि ना उसके समझ में आए और ना खुद के समझ में आए कि लिखा क्या। तो मालूम यह नहीं है कि मसला यह नहीं है कि जिसको चाह दे दिया, इम्तिहान में जो कामयाब होगा उसको मकाम मिलेगा। जो पूछा गया है उसका जवाब देगा तो उसका नतीजा मिलेगा। बाकी ये नहीं कि साहब ये फला के साहबजादे हैं और ये हैं और वो हैं। तो बहरहाल हर चीज के लिए इम्तिहान है। और आजकल तो 100% ऑफिस वाले इस्लामी हो गए हैं, अल्लाह के मानने वाले हो गए हैं। इस मामले में कम से कम जॉब देने से पहले वो इंटरव्यू लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं, आजमाते हैं, मौका देते हैं। अगर कोई कंपनी का मालिक सारे अपने खानदान वालों को अपनी कंपनी में भर दे और उसके बाद उसका अकाउंटेंट के सरकार आपके खजाने खाली हो रहे हैं, कहा क्यों? कहा कि रिश्तेदार आते हैं यहां पे, काम तो होता नहीं है क्योंकि ये बेचारे जानते ही नहीं इनको करना क्या है। इसके लिए आपको प्रोफेशनल लोग रखने होंगे, एक्सपर्ट्स रखने होंगे। तो मालूम यह हुआ कि अगर कोई नाइंसाफी की बुनियाद पर किसी को ले भी आए तो लाया तो जा सकता है लेकिन मरहले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो सही इंसान का और अदालत की भी शर्त यही है, अदालत की भी डेफिनेशन यही है कि सही चीज को सही मुकाम पर रखने का नाम अदालत है। सही चीज को सही मुकाम पर रखने का नाम अदालत। डस्टबिन डस्टबिन के लिए बनाई गई है, गार्बेज गार्बेज के लिए बनाया गया है, तकिया किसी और के लिए बनाया गया है, मेज किसी और काम के लिए बनाई गई है। अब इंसान खरीद तो लाए लेकिन उसका इस्तेमाल ना जानता हो और मेज की जगह गार्बेज गार्बेज की जगह मेज रख दे, तकिए की जगह ये और वो उल्टा सीधा कर दे, तो सिवाय ये जानने के कि ये इंसान ला तो सकता है लेकिन इसका सलीका नहीं मालूम कि करना क्या। तो हर चीज को उसके मुकाम पे सही जगह पे रखना और सही इस्तेमाल का नाम अदालत है। अल्लाह बेहतर जानता है कि किसको नबी बनाना है, किसको इमाम बनाना है, किसको बशर बनाना है, किसको सीखने वाला बनाना है और किसको सिखाने वाला बनाना है। अब मसला पेश ये आता है कि हम सब जब उसके सब बंदे हैं, कोई रिश्तेदारी नहीं है, तो लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हम तुम्हें आजमाएंगे इम्तिहान के जरिए ताकि देख सके कि तुम्हारा में से काम किसका अच्छा है। हम आजमाएंगे, कभी माल के जरिए आजमाएंगे, कभी जान के जरिए आजमाएंगे, कभी औलाद के जरिए आजमाएंगे। और जितना बड़ा मरहला होगा, अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी प्राइमरी स्कूल में एडमिशन का टेस्ट है तो उसका अलग मेयार है, इंटर स्कूल का है तो उसका अलग मेयार है, और किसी खास एजुकेशन के लिए है जैसे पीएमटी हमारे मुल्क में होता है प्रीमियर मेडिकल टेस्ट, या इंजीनियरिंग के लिए होता है पीटी प्रीमियर इंजीनियरिंग टेस्ट, तो उसका मेयार अलग होता है। उसके लिए लोग क्यों घबराते हैं? होती तो वही किताब की ही बातें हैं, फिर आदमी क्यों घबराता है? तो मालूम यह हुआ जितनी बड़े मनसब है, जितना बड़ा ओहदा है, जितनी बड़े मुकाम है, उसका इम्तिहान भी उसी तरह से ज्यादा होना चाहिए और उसी के लेवल का होना चाहिए। क्योंकि खुदा ने फरमा दिया है कि हमने तुम्हें जो तकलीफ दी है, हमने जो तुम्हें तुम पर अहकाम जारी किए हैं, ला युकल्लफुल्लाहु नफ्सी इल्ला वुसअहा, तुम्हारी वुसअत के हिसाब से ही तुम पर अहकाम रखे हैं, तुम्हारी नुसरत के हिसाब से ही तुम पर अहकाम रखे हैं। अल्लाह जानता है किसको क्या करना है। मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिन बैठे हुए थे अखरोट के दरख्त के नीचे, अखरोट का दरख्त बहुत बड़ा होता है, आपने देखा हो तो बहुत बड़ा होता है। कहने लगा, खुदाया मैं तेरे को मानता हूं लेकिन आज तू मात खा गया कि इतने से फल के लिए इतना बड़ा दरख्त और तरबूज इतना बड़ा फल उसके लिए छोटा सा दरख्त। तो तरबूज तो बैल पे लगता है, पेड़ पे भी नहीं लगता, वो खड़ा भी नहीं हो सकता, और इतना बड़ा दरख्त उसका इतना सा फल, ये यहां पे मेरे समझ में नहीं आया। अभी सोचते सोचते सो गए, एक अखरोट टूट के सर पे गिरा, दिमाग चकरा गया, कहा खुदाया तू सही है, जब इसने ये हाल कर दिया तो ये मेरा क्या हाल करता। बाज़ औक़ात इंसान, एक आदमी बेगिंग करता था, भीख मांगता था इधर से उधर से, परेशान हाल था, उसको इधर गया किसी ने कुछ थोड़ा सा अनाज दे दिया, उधर गया उसने वो दे दिया, बेचारा उसको जो अनाज मिला, जो भी भीख में मिली बैग में मिली, उसको अपने दामन में उसने रख के झोली बना के और गिरा बांध दिया। आजकल के बच्चे तो झोली भी नहीं समझते, इनके लिए तो बैगिंग जो है शॉपिंग बैग्स होते हैं। बहरहाल उसने अपने दामन में गिरा बांध ली और ये सोचता हुआ चला कि खुदाया तू मेरे नसीब की गिरा कब खोलेगा, मेरे नसीब की गिरा कब खोलेगा। बस ये सोच ही रहा था, ठोकर खाई और उससे गिरा खुल गई और सारा गेहूं नीचे गिर गया। तो कहने लगा खुदाया मैं इस गिरा के लिए थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो अपने नसीब की गिरा के लिए खोल रहा हूं। अब जैसे ही ये सोचते सोचते उठाता जा रहा है, क्या देखता है कि कुछ अशरफिया पड़ी हुई जमीन पर। जब उसने अपने गेहूं को उठाया तो कुछ अशरफिया नजर आई। कहा खुदाया तू सही जानता है कौन सी गिरा कब खोलनी है। तो इंसान अगर गौर और फिक्र करे तो सही जगह पर आ सकता है। इंसान अगर अपने आप को परेशानी में देखे तो उसका अगर नतीजा निकाले तो नतीजा उसको सही जगह पे पहुंचा सकता है। हजरत हाबील और काबील दोनों में कुर्बानी का मसला के ठीक है तुम भी राह खुदा में कुछ दो, हम भी राह खुदा में कुछ दें। हाबील के पास रेवड़ था, वो बकरियां चराते थे, लिहाजा उन्होंने सबसे बेहतरीन और तंदुरुस्त जो जानवर था वो अल्लाह की राह में कुर्बान किया, कुर्बानी नहीं किया बल्कि अल्लाह की राह में पहाड़ पे रखना था। और काबिल के पास चूंकि वो खेती करता था, उसके पास जो सबसे बेकार गेहूं थे, सबसे बेकार अनाज था, उसको कहा कि खुदा को कुर्बान। बहरहाल मसला ये हुआ कि वो कबूल हो गई और हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई। काबिल को बड़ा गुस्सा आया कि इसकी कुर्बानी कबूल हो गई और खुदा इसको ज्यादा चाहता है, मुझे नहीं चाहता। ये अव्वल जमाना है जब दुनिया में सिर्फ 4 मेंबर हैं और ऐसी जंग हुई कि जिसमें 1/4 तो दुनिया ही खत्म हो गई, वर्ल्ड वार से ज्यादा है, 4 आदमियों और 4 में से भी एक मर जाए तो 1/4 दुनिया खत्म हो गई। अब हाबील काबिल ने हाबील को मार तो दिया, अगर काश वो अपने कुर्बानी की कबूल नहीं होने की इल्लत को समझ लेता तो मसला भी हल हो जाता और दुनिया तरक्की भी कर जाती। आज दुनिया में जितने भी मुश्किलात पाए जा रहे हैं वो नेगेटिव थिंकिंग्स के हैं। इंसान उल्टा सोचता है, इंसान उल्टा सोचता है और वही सोचता है जो मैंने सोच लिया वही सब कुछ है। ऐसा नहीं, ये मुश्किलात हमारी 2 तरह की होती है। एक मरतबा परवरदिगार आलम बला के जरिए हमारा इम्तिहान लेता है। ये जो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं इसमें बिस्मिल्लाह से मुराद जो है बाए बिस्मिल्लाह जो है, बे से मुराद बरकत भी है और बे से मुराद बला भी है। कभी इसके जरिए बरकतों के जरिए इम्तिहान लेगा, कभी बलाओं के जरिए इम्तिहान लेगा, कभी कुछ दे के इम्तिहान लेगा, कभी कुछ लेके इम्तिहान लेगा। ये उसका तरीके कार। कभी कुछ देके इम्तिहान, कभी लेके। तो अल्लाह ने कभी आपको नेमतें दी हैं तो उसको देके आपको इम्तिहान के देखा ये क्या करते हैं, और कभी लेके इम्तिहान लेता है। एक सहाबी रसूल था, बड़ा गरीब, बड़ा मुफलिस, अव्वल वक्त रसूल अल्लाह के सबसे पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने वाला। या रसूल अल्लाह, लोग कहते थे इसको कोई काम नहीं है इसलिए आ जाता है, बड़ा परेशान। या रसूल अल्लाह, मुफलिसी के दिन गुजर रहे हैं, कोई खैर और बरकत नहीं, जॉब्स की प्रॉब्लम है, क्या किया जाए। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि कुछ कारोबार करो। कहा या रसूल अल्लाह, जो भी कारोबार करता हूं सिवाय आने के चला और जाता है, आखिर करूं क्या। कहा कि खुदा तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा कि खुदा को भी मुझ जैसा इंसान मिला या रसूल अल्लाह, किसी बादशाह वादशाह का इम्तिहान ले जिसके खजाने में से कुछ चला भी जाए, तो मेरे पास है ही क्या, बहरहाल थोड़ा बहुत है। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ये लो, ये 2 दिरहम मैं तुम्हें देता हूं और इसको अपने माल में मिला लेना, इंशाल्लाह खुदा बरकत देगा। गया और जाने के बाद उसने माल में मिलाया तो ऐसी बरकत हुई, ऐसी बरकत हुई कि टूटी फूटी झोपड़ी को छोड़ के उसने शहर के बाहर आलीशान मकान बना लिया, तरक्की कर गई, कारोबार बढ़ गया, और उसके बाद हजरत देर से आने लगे, अव्वल सफ तो दूर आखिर सफ में नजर आने लगे, और कुछ दिन बाद आना ही बंद हो गया। दरियाफ्त किया कि हमारा एक सहाबी हुआ करता था यहाँ पर, कहा या रसूलल्लाह वो आजकल बड़ा कारोबारी हो गया है, उसके पास बड़ा माल आ गया है। रसूलल्लाह ने फरमाया अच्छा जरा चल के देखते हैं। अब आए या रसूलल्लाह आपने हुक्म फरमाया होता मैं अपने खादिमों को भेज देता आपको लाने के लिए। कहा कि मैं आया था कि नमाज से पूछूं, आजकल मैं समझा तुम्हारी तबीयत, कभी रसूल डायरेक्ट अटैक नहीं करते, मैं समझा तुम्हारी तबीयत नासाज है, कोई परेशानी है, मुश्किलात है, हम तुम्हारे इयादत के लिए पहुंचते हैं। बहरहाल बड़ी खुशी हुई तुम्हारा कारोबार तरक्की पे देखकर। नमाज में क्या करूं या रसूल अल्लाह टाइम ही नहीं मिलता। कहा कि पहले तो लोग तुम्हें बेकार कहा करते थे, अब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। तो कहा कि या रसूल अल्लाह कैसे जहमत की, आप कहो तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आप जितना कहो मैं देने को तैयार हूं, इंस्टॉलमेंट जो भी मेरी किस्त है, जो भी मुझसे हो सकता है डोनेशन मैं दे सकता हूं। रसूल अल्लाह ने फरमाया मुझे तेरा डोनेशन नहीं चाहिए, मेरे 2 दिनार वापस कर। अब कारोबार तरक्की पे हो गया, मैंने जो तुम्हें 2 दिरहम दिए थे वो वापस कर दो। उसने कहा या रसूल अल्लाह ये कौन सी बड़ी बात है, ये लीजिए और इससे ज्यादा दे दूं। कहा नहीं मुझे ये 2 ही चाहिए। अब जो बरकत के दिरहम निकले तो पूरा का पूरा कारोबार, क्योंकि जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, एकदम जमीन पर आ गया। वाले वक्त नमाज में नजर आने लगे, रसूलल्लाह ने फरमाया कारोबार सही चल रहा है। कहा या रसूलल्लाह इतना बेहतरीन चल रहा है कि मैं बता नहीं सकता। कहा कि इंसान अगर अपने आप को समझ ले कि वो तुम्हें दे के अल्लाह ने आजमाया था, पहले वो तुम्हें लेके आजमा रहा था, उसने तुम्हें लेके भी आजमाया तो तुम कामयाब गए, लेकिन तुम्हें दे के आजमाया तो तुम नाकाम रहे। तो हर इंसान के लिए नहीं है कि किसको क्या मिलना चाहिए, वो बेहतर जानता है किसके साथ क्या होना चाहिए, हम और आप इसको तय नहीं कर सकते। तो लिहाजा इम्तिहान
मोहम्मद सल्लल्लाहु
तो हमारे अंबियाए किराम को भी आजमाया, हजरत आदम को आजमाया, हजरत नूह को आजमाया, हजरत अय्यूब को आजमाया, हजरत याकूब को आजमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आजमाया, और सारे के सारे इम्तिहानात लिए उनके कि देखा हमारा ये बंदा। हजरत यूसुफ की सजा सिर्फ इसलिए ज्यादा हो गई कि उन्होंने जिंदान से रिहा होने वाले एक आदमी से कहा कि अगर तुम बादशाह के खास आदमी बन जाओ तो मेरे बारे में भी थोड़ी सोचना। अल्लाह ने उस आदमी के जहन से ही बात निकाल दी, डिलीट कर दिया प्रोग्राम के वो कुछ यूसुफ ने कहा भी था। और बहुत साल बाद जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम राज और नियाज कर रहे हैं तो हुक्म खुदा हुआ कि यूसुफ ये जो तुम्हारे कैद के अय्याम जो खत्म होने वाले थे जानते हो क्यों बढ़ गए। कहा तुमने अल्लाह को छोड़ के गैर पे तवक्को कर ली थी, तुमने ये क्यों नहीं कहा खुदा से खुदाया मुझे यहां से निकाल, क्योंकि तुमने कहा था खुदाया मुझे इस जुलेखा से बचा, लिहाजा हमने बचाने के लिए तुम्हें जिंदान में बुला लिया, और अगर तू यहां हमसे कहे तुम यहां से कहते कि खुदाया मुझे यहां से निकाल तो हम तुम्हारे असबाब मुहैया कर ले। तुमने तकिया क्यों किया उस इंसान पर कि वो बादशाह से कहे, क्योंकि हम इज्जत देने वाले हैं, हम तुम्हें अजीज मिस्र बनाने वाले। तो अजीजो फिर इम्तिहान में कामयाबी हुई तो जनाब यूसुफ को जिंदान से निकाल के अजीज मिस्र बना दिया गया। हजरत मूसा का इम्तिहान लिया, तमाम अंबिया का इम्तिहान लिया, और सबने अपने इम्तिहान के मंजिलों पर फाइज हुए, और उसके बाद उनको एक मुकाम मिला, उनको एक दर्जा मिला, ताकि ये इंसान ये ना कह दे कि खुदाया इनको तूने ये मेडल क्यों दे दिया, इनको खलील क्यों बना लिया, इनको कलीम क्यों बना लिया, इनको नूह क्यों बना दिया, इनको ईसा मसीह क्यों बना दिया, इनको हबीब इलाही क्यों बना दिया। कहा कि इन सब के इम्तिहानात लिए हैं, और जब हमने इनको इम्तिहानात में पाबरजा पाया, सरे राह पाया, तो हमने इनको दर्जात अता किए ताकि तुम्हारे पास कोई ये ऑप्शन ना रह जाए कि ये कह सको कि खुदाया हम भी बंदे थे ये भी बंदे थे, फिर तूने ये हमारे साथ इंसाफ ना किया। कहा कि नहीं हम तुम्हें भी आजमाते हैं, इनको भी आजमाते हैं, ये इम्तिहानात में कामयाब हो गए हैं, लिहाजा हमने इनको दर्जात दिए हैं। अजीजो हमारे ऊपर जरा सा इम्तिहान आता है, जरा सा हमारी फाइनेंशियल पोजिशन डाउन हुई, डोनेशन बंद, सारे काम सही जगह पर, अरे मौली साहब कुछ नहीं हो सकता, आजकल हालात सही नहीं। देखिए अल्लाह की राह में देना, अल्लाह की राह में खर्च करना, इसके लिए यकीन चाहिए, इसके लिए यकीन चाहिए। और यकीन हम जानते हैं कि वो 1 के 70 देता है, गेहूं का 1 दाना जमीन में जाता है, अल्लाह के हवाले तो जाता है, 1 दाने से 70 बालियां, हर बाली में 70 दाने, तो 1 का 70 रिटर्न तो हमें मालूम है। आयतुल्ला मिश्किनी कहते हैं कि मैंने एक जगह रिवायत पढ़ी थी कि अगर खुदा की राह में कोई खर्च करता है तो वो 10 बराबर देता है। मेरे बड़े मुफलिसी के दिन चल रहे थे, मैं बड़ा परेशान था और पूरा मेरा महीने का खर्च, सिर्फ 5 तुमान मेरे पास बचे। मैं उस 5 तुमान से मुझे अपने महीने के 20 दिन गुजारने थे। बहरहाल उसको रखे हुए मैं सोचता हुआ चला जा रहा था कि एक शागिर्द मुझे मिला कि जब मैंने उससे पूछा तुमने तो मुझसे छुट्टी मांगी थी जाने की, गए नहीं अपने गांव, तो कहने लगा हुजूर 5 तुमान कम पड़ रहे हैं किराए में, इसलिए नहीं जा सकता। अब पूरी महीना है और 5 तुमान है, लिहाजा उन्होंने कहा कि ठीक है अल्लाह मदद करेगा, ये लो 5 तुमान अपने शागिर्द को दिए। कहते हैं कि मैं ये कहकर देकर आगे ही चला था कि मेरे गांव का एक बहुत रईस इंसान मिला, कहने लगा कि मैं आपको ही तलाश कर रहा था, मैंने एक नया कारोबार शुरू किया है, उसमें तरक्की अल्लाह ने दी है, तो मैंने अपने गांव के जितने भी उलमा हैं, तलबा हैं, उन सबको मैंने एक तो छोटा सा तोहफा दिया है और आपके लिए भी मैं ये हदिया लाया हूं। कह रहे अब जो मैंने खोल के देखा तो उसमें 50 तुमान थे, 5 दिए थे और 50 तुमान। फिर कह रहे कि मैंने बारहा इस चीज को आजमाया कि मैंने जितने दिए उसके ठीक 10 बराबर मुझे वापस मिले। लिहाजा हम अपने इक्तेसाद, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए तो परेशान हैं, लेकिन उससे रुजू नहीं करते हैं जो हमारे जमाने की मुश्किलों को दूर करने वाला है। इस जमाने में हम सबका मुश्किलों का दूर करने वाला हमारे जमाने का इमाम है। हम कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेट करें, अपनी बात को उनके सामने रखें, छोटी सी छोटी बात को अपने इमाम के सामने रखें। फर्जंदे रसूल मेरा यह मसला है, मैं पूरी कोशिशें कर चुका हूं, मेरे सारे रास्ते बंद हैं, अब देखना यह है कि जहरा का लाल मेरे इस रास्ते को कैसे खोलता है। यकीनन आप अपना जवाब पाएंगे। आप अरीजा लिखें, अरीजा सिर्फ हमारा एक जो है रस्म नहीं होनी चाहिए कि 15 शाबान पे गए और जाने के बाद ओह साहब खुशियां मनाते हुए एक लेटर दिल से और बेदिल से लिख दिया और वो आटे में लगा के, और चूंकि दोस्त जा रहे हैं इसलिए मैं भी चला जाऊं। नहीं, अरीजा अगर आपको हर 5 मिनट बाद मुश्किल आ रही है तो आप 5 मिनट बाद अपने इमाम से कम्युनिकेट करें, उनको लिखें। तो कहते हैं कि साहब मौली साहब अरीजा मछली तो आटा खा जाती है, कागज ऊपर आ जाता, कहां इमाम के पास जाता है? इमाम के पास तो अरीजा नहीं जाता, मेरे को एक लेटर फैक्स करना था, पहुंचा का सरकार इसको फैक्स कर दीजिए, उन्होंने एक बटन दबाया, थोड़ी सी आवाज आई और उसके बाद कहा हुजूर आपका फैक्स हो गया है, मेरा लेटर वापस किया। मैंने कहा भाई मैं इसको भेजने आया हूँ, वापस ले जाने थोड़ी आया हूँ। कहा नहीं सरकार वो तो फैक्स हो गया। लेटर तो यही रह गया, फैक्स कहाँ हो गया? कहा हुजूर तरक्की हो गई है, ये यहाँ रह जाए फिर भी तहरीर चली जाती है, तो हमें दुनियावी तरक्कियों पे तो बड़ा यकीन है, उसको पेमेंट भी कर दिया कि मेरा लेटर वहां पहुंच गया, लेकिन अपने जमाने के इमाम के लिए ये हमें यकीन नहीं है कि हम कुछ लिख के दें और वो ना पढ़े। अरे पढ़ना लिखना तो सब दूर की बातें हैं, हम अपनी प्यास को जाहिर तो करें, जब भी तो आपको कोई पानी पिलाएगा। इतना मजमा बैठा है, अगर आपने कह दिया पानी पिलाए तो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ का जो भी जिम्मेदार आदमी हो फौरन आपको पानी लाए, लेकिन अगर वो आते ही सबको पानी तो बाज औकात लोग नाराज भी हो जाएंगे कि सरकार मुझे प्यास नहीं है, सर्दी में आप पानी पिलाए जा रहे हैं। अपनी प्यास का इजहार तो करें, हम एहसास से तशनगी तो करें कि मौला हम आपके ख्वाह हैं। अभी हमारे अमाल ऐसे नहीं हुए कि वो हमारे पास आए। बहुत से कहते हैं मौली साहब ज्यारत पे जाएंगे मौला का बुलावा आएगा, अरे उनके बच्चों की शादी हो चुकी, कोई शादी कार्ड नहीं आएगा। आप सोच रहे हैं कि आपके लेटर पे कोई लेटर बॉक्स में कोई शादी कार्ड आएगा, मौला के बेटे की शादी और आपको बुलाएंगे? नहीं, उन्होंने अपने रास्ते खोले हुए हैं, आप असबाब मुहैया कीजिए। अपने दिल की बात को, अपनी तमाम कोशिशों करने के बाद अगर आपका सफर टल जाए तो समझ लेना कि अभी रास्ता रुका हुआ है, और वो रास्ता भी रुकना इसलिए है कि आपकी कोई खैर खूबी होगी, आपके लिए कोई मसलहत होगी, आपकी कोई परेशानी को मेरा मौला दूर कर रहा है। लेकिन हम अपने घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं, पासपोर्ट नहीं बनवाया, काम नहीं किया, ना अप्लाई किया, कुछ नहीं किया, अरे मौलाना मौला बुलाएंगे तो जाएंगे, मौला पे कुर्बान, ऐसे कुर्बानी का कोई फायदा नहीं। इंसान अपने आप को उनका आशिक माने। लिहाजा अभी हम इम्तिहान की मंजिल में, ये हमारा इम्तिहान, हमारे इमाम को गैबत में भेज के इम्तिहान लिया जा रहा है हमारा, और उनका इंतजार भी हमारा इम्तिहान है। अजीजों, अगर उनके कल का इंतजार हमारे आज को सुधार दे तो क्या वो बुरा है? क्या आपसे कहा जाए कि कल अगर आपने ये आज ये किया तो कल आपको ये मिलेगा, अगर आपने आज ये काम अंजाम दिया तो कल आपको इसका ये सिला मिलेगा? तो इमाम के इंतजार में एक आशिक को कैसा होना चाहिए, एक मुमतहिन को अपना इम्तिहान देने में कैसा होना चाहिए? तो हम अपने काम को करें, उसके बाद उनके जहूर की दुआ करें और अपनी मुश्किलात को, अपने मसाइल को उनसे बयान करें। मैं पहले भी कह चुका हूं और बार बार कहता हूं और कहता रहूंगा कि जब कोई बच्चा खो जाता है, तो आज तक कोई बच्चा ऐसा मिला है जिसने ये कहा हो कि मेरे मैं खो गया हूं? वो कहता है मेरे अम्मी अब्बू खो गए, हमेशा ऐलान यही करता है मेरे वालदेन खो गए। जबकि खोता कौन है? बच्चा खोता है, माँ बाप नहीं खोते हैं, लेकिन कहता वो यही है कि मेरे अम्मी अब्बू खो गए हैं। अजीजो, इमाम गैबत में नहीं गए, हम गैबत में चले गए, हम खो गए हैं, हम अपनी असल से हट गए हैं, हम अपने इम्तिहान की मंजिलों में कामयाब नहीं है। हम उनको पुकारें, ये हमारे लिए इम्तिहान है कि हम उनसे कितना कम्युनिकेट करते हैं, हम उनसे कितना कॉन्टेक्ट करते हैं, हम अपने दिल की बातों को उनसे कितना करते हैं। हम अपनी जगह पर सही रहें और उसके बाद ईमान से अर्ज करें, इम्कान नहीं है कि आपकी बात रद्द हो जाए, इम्कान नहीं है कि रद्द हो जाए। लिहाजा ये इम्तिहान आपकी मंजिल चले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो हमें दर्स दिए हैं उसमें एक दर्स इम्तिहान भी है कि इम्तिहान में किस लिए, किस तरह से कामयाब हुआ जाता है। हम में से बहुत से लोग इसलिए आमाल अंजाम नहीं देते, अरे मौली साहब अब तक की नहीं पढ़ी तो अब आगे क्या पढ़ें? सबसे पहले तो ना उम्मीदी कुफ्र, अभी तक गुनाह नहीं किया था लेकिन अब गुनाह शुरू हो गया। और एक शख्स बनी उमैया में एक खलीफा गुजरा है, उमर इब्ने अब्दुल अजीज, आठवां खलीफा है और 99 से लेकर 100 हिजरी तक ये एक साल के लिए खलीफा वक्त बना और बकिया तमाम बनी उमैया के खलीफा में निस्बतन सबसे बेहतर ये था, थोड़ा इंसाफ पसंद था, बहुत से काम इसने अंजाम दिए। इसके पास एक बच्चा आया, बहुत से लोग आए कि इसको खिलाफत की मुबारकबाद दें, बड़े बूढ़े बूढ़े थे, बड़े शेर लिख कर लाए, ये है वो है, तुम अच्छे हो, ये हो वो हो, लेकिन एक बच्चा था 10 साल का। उसने कहा खलीफा मैं तुझे खिलाफत की मुबारकबाद नहीं देता हूं, इस ओहदे पे आने के बाद तू थोड़ा सही चल रहा है, इस बात की मुबारकबाद देता हूं। तो खलीफा कहता है कि इतने बड़े मजमे में ये बच्चा मुझे ये बात सिखाने आया है, लेकिन इसकी बात में दम है। कहा कि अच्छा बताओ, कोई मुझे नसीहत करो। उसने कहा मैं तुझे सिर्फ एक नसीहत करूंगा जो तेरी जिंदगी को कामयाब बना सके। कहा क्या? कहा कि हिल्म खुदा को लेके कभी मगरूर मत होना। का हिल्म का मतलब क्या? का हिल्म का मतलब यह है कि खुदा, जैसे हम किसी चीज पे सब्र करते हैं उसका रिएक्शन नहीं करते हैं, तो अल्लाह जब किसी बात को रिएक्ट नहीं करता है तो उसको हिल्म कहते हैं। कि अगर अल्लाह ने फौरन जालिम से बदला नहीं लिया तो इसको यह ना समझना कि उसने जालिम को माफ कर दिया। बहुत से जो नतीजा निकालते हैं कि यजीद ने इतना बड़ा काम कर दिया उसका क्या बिगड़ा, फौजों ने इमाम हुसैन के साथ ये कर दिया, तो क्या कहा कि अल्लाह का हिल्म तुझे मगरूर ना बना दे, बस इस पर तवज्जो रखना। अजीजो, अल्लाह अगर हमारे बुरे काम अंजाम देने पर भी हमें कुछ नहीं कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मगरूर हो जाएं और एक कानून बना लें कि गुनाह करने के बाद कुछ नहीं होता है। हर एक्शन का रिएक्शन। अल्लाह ने कोई चीज हम पे वाजिब करार नहीं दी मगर यह कि वो हमारी जरूरत जिंदगी थी, अगर वो हमारे लिए जरूरी ना होती तो वो वाजिब ना होती। कोई चीज उसने हराम करार नहीं दी मगर यह कि वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत बुरी असर डालने वाली थी। माशाल्लाह अतिब्बा बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, इस बात को जानते हैं कि दवा इतनी जल्दी असर नहीं दिखाती है जितनी जल्दी जहर असर दिखाता है। इसी तरह दवा नेकियां हैं, नेकियां धीरे धीरे असर करती हैं, और जहर यानी गुना, गुना इंसान की जिंदगी पर बहुत जल्दी असरअंदाज होता है, बहुत जल्दी उसकी जिंदगी को असर करता है। एक शख्स मसीही था, उसने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर कहा, फरजंद रसूल, आप जो इस्लाम दीन मुबीन इस्लाम की बरकतों को और अच्छाइयों को बयान करते हैं, आखिर इसमें क्या फर्क है? आपके यहां पे भी बुराइयों को बुरा माना जाता है, हमारे यहां भी बुराइयों को बुरा माना जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बुराइयां अंजाम ना दो, बुराई अंजाम ना दो। आपके जद ने भी आगे यही बात दोहरा दी तो फिर उससे क्या फायदा हुआ? कोई डेवलपमेंट तो नहीं हुआ उसी बात को उन्होंने कह दिया, तो फिर इसमें फर्क क्या है? आपने बयान फरमाया कि मेरे जद ने सिर्फ इतना नहीं कहा है कि बुरा काम अंजाम मत दो, बल्कि कहा तसव्वुर गुनाह भी ना करो। हजरत ईसा ने फरमाया गुनाह ना करो, रसूलल्लाह ने फरमाया तसव्वुर गुनाह भी ना करो। कहा कि क्या फर्क पड़ता है तसव्वुर गुनाह से? जहन की चीज, तसव्वुर यानी जहन में कोई चीज। जैसे मैंने नाम लिया आपसे आग, तो आपके दिमाग में आग की तस्वीर आ गई, नहीं आ गई? मैंने कहा बर्फ, तो आपके जहन में एक तस्वीर आ गई बर्फ की। तो क्या वो बर्फ जो की तस्वीर आपके जहन में आई है, क्या वो किसी चीज को ठंडा कर सकती है? वो आग जो आपके जहन में आई है, क्या वो किसी चीज को जला सकती है? नहीं जला सकती। इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं। तो कहता है इमाम से के फर्जंदे रसूल, तसव्वुर गुनाह के लिए क्या बात हुई, इससे क्या फायदा है? इमाम ने फरमाया कि अच्छा ये बताओ आग में और धुएं में क्या फर्क? कहता है कि आग जला सकती है, का धुआं बोला वो नहीं जला सकता। लेकिन आपने फरमाया धुआं काला तो कर सकता है, कहा फर्जंद रसूल काला कर सकता है। कहा कि जिस तरह से गुनाह इंसान के आमाल को जला देता है, लेकिन तसव्वुर गुनाह इंसान के दिल को काला कर देता है, उसके जहन को काला कर देता है। लिहाजा तसव्वुर गुनाह के लिए भी मना किया गया है। अजीजो ये खाम दीने खाम नहीं है, खाली नहीं है, बहुत इसमें बरकतें, बहुत इसमें बातें। इसको सुनाने और समझाने में बहुत टाइम लगता है। आप खुद देखिएगा कि जैसे जैसे एज फैक्टर बढ़ता जाता है, इंसान का दिमाग काम करना कम कर देता है, बंद कर देता है। लेकिन अल्लाह ने इस इल्म दीन को एक बरकत दी है कि हमारे जितने भी मराजे हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनका जहन काम ज्यादा करने लगता है। आपको एक मर्जे तकलीफ नहीं मिलेगा जो दीवाना हो गया दुनिया से गया। आपने सवाल किया, हजारों हदीस और हजारों हदीसों में भी उसके सही होने और शक मशकूक होने और गलत होने, सारी सनद ऐसी नहीं है कि मसलन कंप्यूटर पे डाल दिया और आ गई, नहीं। बल्कि उसको कहने वाला कौन है, उसको किस तरह से बयान किया गया है, ये टोन जो है, ये एक्सेंट जो है, ये इमामों का है या नहीं है, तमाम बातों को जाना जाता है। तब कहीं जाके एक बात और एक इस्तंबात शरी किया जाता है ताकि आपका एक मसला हल हो। लेकिन अल्लाह ने बरकत रखी है इस मामले में कि अगर कोई मेरे नेकी की तरफ, आयतुल्लाह हुज्जत मजलिस पढ़ रहे थे, मजमा बहुत माशाल्लाह बढ़ गया, काफी मजमा हो गया। जब मजमा बढ़ गया तो पीछे से एक शख्स ने कहा कि खुदा रहम करे उस पर जो अल्लाह के लिए एक कदम आगे बढ़े। सारा मजमा खड़ा हुआ और एक एक कदम आगे बढ़ गया। आयतुल्लाह हुज्जत मिंबर से नीचे उतरे, जाने लगे, कहा हुजूर हम तो आपको सुनने आए हैं। कहा जो बताने आया था वो तो इसने कह दिया, जो सुनाने आया था उसने एक कलमे में, एक जुमले में कह दिया कि खुदा रहम करे उस पर जो अल्लाह के लिए एक कदम आगे बढ़ाए। खुदा के लिए एक कदम आगे बढ़ाए, तो यानी अल्लाह के लिए एक कदम आगे बढ़ाना इंसान के लिए बहुत बेहतरीन अमल है। और धीरे धीरे आपने देखा होगा कि आप जा रहे हैं और एक कॉरियार्ड में, एक झूले में एक बच्चा खूबसूरत सा लेटा हुआ है। जैसे ही आपने उसकी तरफ देखा, उस बच्चे ने मुस्कुरा के देखा। अब आप जा नहीं सकते, आप हुमक्के उसको। तो उस बच्चे ने कोई एक्ट किया तो आपने रिएक्ट किया, उस बच्चे ने मुस्कुरा कर देखा। हम अपने अहले बैत की तरफ मुस्कुरा कर तो देखें, वो हमें आगोश में लेने को तैयार हैं और हमें हमारी बख्शिश कराने को तैयार हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई अमल नहीं है। हमारी तरफ से कोई अमल नहीं है। हम अहले बैत की तरफ आगे बढ़ के देखें, मंजार अल हुसैन कमिसले जार अल्लाह फिल अर्श। हदीस आई माँ है कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत की गोया उसने अल्लाह की अर्श पर ज्यारत की। ज्यारत से मुराद ज्यारत मानवी है, ये नहीं कि अल्लाह को देखे कोई देख सकता, नहीं, उसको तो लन तरानी या मूसा, उसको कभी नहीं देखा जा सकता। लेकिन जहां अल्लाह से मुराद, तो आखिर ऐसा क्या है कि एक गुनाहगार भी इमाम की ज्यारत कर लेता है, एक मुत्तकी भी इमाम की ज्यारत कर लेता है? तो इमाम की ज्यारत ऐसे ही नसीब नहीं होती। लेकिन हम अगर मिसाल दें कि गलत आदमी ने ज्यारत कर ली, नहीं, बाज़ औकात इमाम इम्तिहान के बाद उसको ये दर्जा अता फरमाते हैं, बाज़ औकात दर्जा देके उसको इम्तिहान में डालते हैं। कभी उसको ये दर्जा देके कि तुम ज़ाहिर हुसैन बन गए हो, ये इम्तिहान है उसका। एक इंसान तमाम मराहिल से गुजरा और उसको मौला की ज्यारत नसीब हुई, तो वो इम्तिहान से गुजर के पहुंचा। और एक इंसान को बगैर अमल के बुला लिया, तो फिर इमाम उसको दे के उसका इम्तिहान ले रहे हैं कि हमने तुम्हें ज़ाहिर हुसैन कहलवा दिया, अब तुम हमारे लिए क्या करते हो और कितने कदम हमारे साथ चलते हो। ठीक करबला में हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसा फकीह इंसान भी मौजूद है और वहाब कल्बी जैसा नौ वारिद मुसलमान भी मौजूद है, लेकिन दोनों के ईमान में कोई फर्क नहीं। वो अपने इम्तिहानात से, अपने इश्क और अपने इल्म व फकाहत की वजह से इमाम की मारिफत के लिए पहुंचे हैं, और वहब कल्बी इमाम की मारिफत को पहले लाए और उसके बाद अपने आप को आरास्ता किया उन तमाम चीजों से। कोई तारीख नहीं लिखती कि ईमान लाने के बाद वहब कल्बी ने नमाज नहीं पढ़ी हो, वहब कल्बी ने कोई अहकाम दीन से सरपेची की हो, वहब कल्बी ने अपने जमाने के इमाम का कहना ना माना हो। तो बाज़ औकात ये मेडल पहले है और बाज़ औकात मेडल बाद में है। ये हुसैन है, उनके लिए सब मुमकिन है, वो हमसे और आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। अजीजों, हमें अहले बैत का सफीना मुकाम पे पहुंचा देगा। सफीना निजात है, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। हुसैन हिदायत का चराग है और निजात की कश्ती है। हम राह हुसैन को उसकी चमक के साथ देखें, उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाएं, तभी तो हमारी हिदायत होगी। खाली दूर से देखने पर फिर वो हिदायत क्या, वो तो अपनी जगह, हम अपनी जगह। मैं कतरे शबनम हूं दामने गुल पर, हजार नेज उसे खेचे है आफ्ताब मुझे। अगर मैंने अपने आप को अपने कल्ब में वो कतरे शबनम की मानिंद नरमी ला दी, तो सूरज हजारों लाखों किलोमीटर दूर होकर भी उसको खींच रहा है। क्या पत्थर को खींचता है सूरज? क्या पत्थर को खींचता है? क्या हीरे को खींचता है? क्या जमरूद को खींचता? नहीं, किसी को नहीं खींचता। उस पानी ने अपने अंदर वो नरमी पैदा की कि तपिश आफ्ताब ने हजारों मील से अपनी तरफ उसको खींचना चाहा। हम अपने अंदर वो कतरे शबनम वाले हालात पैदा करें, हम अपने अंदर वो नरमी पैदा करें कि जिसके लिए कहा जाए फरजंदे रसूल कहे ये मेरे चाहने वाले हैं। हम हर रोज ज़ियारत पढ़ते हैं, या लैतनी कुंतु मअकुम फाफूज़ा फौज़ा नज़ीमा, काश हम आपके साथ होते, काश आपके साथ होते। ऐसे कहने से नहीं है, बल्कि हम अपने दिलों का आमादा करें कि अगर हुसैन हमें बुला ले तो हम इम्तिहान में कामयाब हो सकते हैं। ज़बान हाल से कहती है मस्जिदें आओ, सफ़े संवारो शहे मशरक़ैन वाले हो। सवाल ये नहीं गाफिल हो क्यों नमाजों से, सवाल ये है कि तुम तो हुसैन वाले हो। सवाल ये है कि तुम तो हुसैन वाले हो। हुसैन इब्ने अली ने अपनी कुर्बानी और अपनी जान ये इम्तिहान की मंजिलों में जो इंसान को लाके खड़ा किया, और इम्तिहानात के सही माना जो इंसान को फराहम फरमाए, वो हमारे लिए एक दरसे जिंदगी है, हिदायत है। इमाम आली मुकाम ने जुल्म के मुकाबले लड़ना सिखाया, फसाद के मुकाबले लड़ना सिखाया, बुराई के मुकाबले लड़ना सिखाया, बातिल के मुकाबले में लड़ना सिखाया, हक के लिए लड़ना सिखाया, अच्छाई के लिए लड़ना सिखाया, और ना सिर्फ लड़ना सिखाया बल्कि उसका हदफ बता दिया कि अगर तुमने अपने आप को इस राह में कुर्बान कर दिया तो बस जिस जगह से तुम्हारी जबान खामोश हो जाएगी वहां से कुरान में अल्लाह की जबान शुरू हो जाएगी, और वो कहती भी नजर आएगी कि मेरी राह में मरने वालों को हरगिज हरगिज मुर्दा ना समझना, ये जिंदा हैं और मुझसे रिस्क पाते हैं। जिंदगी से मतलब यही तो है कि इंसान को रिस्क मिले, कि जहां पर इंसान की जबान खामोश हो जाए फिर उसके आगे अल्लाह की जबान फद कुरूनी अदकुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। इंसान उसका जिक्र करके خاموش ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے خاموشی نہیں ہے. جب وہ ذکر کرنے لگتا ہے تو آپ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے اور 1400 سال بعد بھی اس مظلوم کی یاد کو منا رہے ہیں, اور نہ صرف منا رہے ہیں بلکہ یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہماری نسلوں میں اس حسین کے غم کو باقی رکھ تاکہ ہم اس غم کے ذریعے اپنی ہدایت پا سکیں اور تیرے دین کو صحیح معنی میں سمجھ سکیں, اور اس نواسۂ رسول کا احسان ہماری نسلوں پر باقی رکھ تاکہ ہم اپنی نسلوں کو بتا سکیں کہ فرزند رسول نے اپنی جان کی بازی لگا کے تمہارے لیے آسانی فراہم کی ہیں. یہ مسجدوں کی اذانیں, یہ کلمہ حق جو آج پوری دنیا میں, ڈھاکہ کے مؤذن نے صبح نماز فجر کا وقت ہوا, ڈھاکہ کے مؤذن نے اذان دی, ابھی اس کی اذان ختم نہ ہونے پائی تھی, کلکتہ کے مؤذن کا ٹائم ہو گیا, اس نے اللہ اکبر کی اذان شروع کی, اس کا وقت ختم نہ ہوا, بہار کے مؤذن کے ٹائم ہو گیا, اس نے اللہ اکبر کی صدا شروع کی. چلتے جائیے, یہ شہروں کے وقت کا اختلاف اس بات کو بتا رہا ہے کہ اللہ اکبر کا نعرہ کبھی رکنے نہ پائے, اللہ اکبر کی آواز رکنے نہ پائے. جیسے جیسے آپ بڑھتے جائیں گے, ملک بدلتے جائیں گے, ٹائمنگز چینج ہوتے جائیں گے, ادھر ایک کی اذان ختم ہوگی دوسری کا وقت شروع ہو جائے گا, تیسرے کا وقت, اور پھر اس کے بعد جیسے ہی یہاں امریکہ کی اذان فجر کا ٹائم ہوا تو اس دنیا میں نماز عشاء کا وقت آ جائے گا, وہاں پہ پھر اذانیں شروع ہو جائیں گی. پوری کائنات میں راؤنڈ کلوک اللہ کا نام آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اس کو اتنا مضبوط بنا گیا کہ اب کوئی آواز اس کو روک نہیں سکتی, اب بے عملی اس کو ختم نہیں کر سکتی, اب کوئی انسان اس چراغ کو خاموش نہیں. ہمیں کسی کو نگاہ نہیں کرنی کہ کون کیا کر رہا ہے, ہمیں اپنے پہ نگاہ کرنی ہے کہ ہم اپنے امتحان کو کیسے دے رہے ہیں. خدایا تو نے مجھے جاب دیا, میں نے تیرے بتائے ہوئے راستے سے اس پہ خرچ کیا, تو نے مجھے اولاد دی, میں نے تیرے بتائے ہوئے طریقے سے اس کی آمادگی کی, گھر دیا, میں نے اس کا استعمال یہ کیا, خدایا مجھے عقل کی دولت دی, اس سے میں نے تعلیم حاصل کی, بشریت کا فائدہ پہنچایا, ہر چیز کا انسان حساب و کتاب رکھے. ہاں عزیزو, یہ امتحانات ہمارے لیے بہت آسان ہیں, لیکن آپ امتحان اس سے پوچھیں جو صبح سے لاشے پہ لاشا اٹھا رہا ہو اور اس کے بعد اس کے ساتھ ایک ایسی امتحان کی منزل آ جائے کہ اچانک ایک جوان بیٹا سامنے آ کے کھڑا ہو جائے, جو آ کر کہے کہ بابا آپ کے عزیز و اقربا شہید ہو گئے, اے میرے مظلوم بابا مجھے اجازت دے دیجیے. عزیز و بڑی سخت منزل ہے کہ جوان بیٹا مرنے کی اجازت مانگے. لوگ تمنا کرتے ہیں کہ میرا جوان بیٹا اس کی کامیاب زندگی کی دعا کرتے ہیں, اس کی کامیابی, اس کی شادی کی, اس کی اولاد کی دعا کرتے ہیں, لیکن حسین کربلا کے میدان میں دین مبین اسلام کو بچانے کے لیے اپنے امتحان کے منزل میں کھڑا ہو گیا, اور کھڑا ہونے کے بعد یا الہی و سیدی و مولائی, اے میرے معبود اگر میں نے اعلان عشق کیا ہے تو تیری عشق میں اپنے گھر کو لٹانے کو تیار ہوں. علی اکبر سامنے کھڑے ہو گئے, اے بابا آپ مجھے رنگ کی اجازت دیجئے. بیٹا جب کبھی میں مشتاق ہوتا تھا اپنے جد کی, اپنے نانا کی زیارت کا, تو میں تمہیں دیکھ لیا کرتا تھا, میں تمہیں اپنی ان کی سیرت اور صورت میں تمہیں پاتا ہوں. ایک مرتبہ علی اکبر نے جب پھر مطالبہ کیا کہ بابا مجھے رن کی اجازت دیجیے, مجھے مرنے کی اجازت دیجیے, آپ نے فرمایا کہ علی اکبر تمہارا حق تمہاری پھوپھی پر ہے, جاؤ جناب زینب نے تمہیں پال کر بڑا کیا ہے اور جا کر ان سے اجازت مانگو. ایک مرتبہ خدمت حضرت زینب میں علی اکبر آئے, جناب زینب ابھی اپنے دو لال کا غم منا کر بیٹھی ہے, قاسم کا غم منا کے بیٹھی ہے, عباس جری کا غم منا کے بیٹھی ہیں, ابھی خیمے میں ابھی جناب امام زین العابدین کی عیادت کر رہی ہیں, بیمار امام کو سنبھال رہی ہیں. علی اکبر آگے آتے ہیں, اے پھوپھی اما کسی سمت مجھے بابا اجازت نہیں دیتے, اجازت کو متوقف کر دیا آپ کی اجازت پر. جناب زینب نے علی اکبر کو دیکھا, کلیجے سے لگا کر کہتی ہے, میرے لال کیا اونو محمد کی قربانی بھی تجھے نہیں بچا پائے گی, کیا قاسم کی قربانی بھی تجھے نہیں بچا پائے گی, کیا عباس کی قربانی بھی تجھے نہیں بچا پائے گی, اے میرے لال میں تجھے کس طرح سے رن کی اجازت دے دوں. اے علی اکبر تم تو میرے نانا کی شبی ہو, میرے باپ میرے بھائی حسین کی دل کی ڈھارس ہو, بیبیوں کے دل کی آس ہو. ایک مرتبہ علی اکبر نے ایک منطقی سوال کیا, پھوپھی اما اتنا بتا دیجئے روزے آخر روز قیامت اگر میری جدہ نے آپ سے سوال کر لیا, زینب تجھے تیرا لال عزیز تھا یا میرا لال عزیز تھا, ارے حسین مظلومیت کے ساتھ تنہا تھا اور تو نے علی اکبر کو بچا لیا, تو بھوبی جان آپ کیا جواب دیں گی؟ ایک مرتبہ بھتیجے کی اس گفتگو کو سن کے کلیجے سے لگایا اور پھوپھی بھتیجے بہت دیر تک روتے رہے. اس کے بعد آپ امام کی خدمت میں لے کر آئیں, اے بھیا علی اکبر جنگ کی اجازت مانگ رہے ہیں, رن کی اجازت دے دیجئے. حسین نے جب دیکھا علی اکبر کو زینب نے اجازت دے دی ہے, اپنے کڑیل جوان کو گھوڑے پر سوار کیا اور کہا کہ اے یوسف زمان, ارے اپنے باپ کو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. ایک مرتبہ علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی بوڑھا باپ گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. گھوڑے سے نیچے آئے, آنے کے بعد کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا. اے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ کڑیل جوان سے جدائی کا غم کس قدر ہوتا ہے. ہاں علی اکبر کو جدہ رخصت کیا. حسین در خیمہ پر علی اکبر کا کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں, علی اکبر پر حسین کی نگاہ ہے, جناب فضا کی نگاہ حسین کے چہرے پر ہے, جناب لیلا کی نگاہ جناب زینب کی نگاہ جناب فضا پر ہے, جناب لیلا کی نگاہ جناب زینب پر کے چہرے پر ہے. ایک دوسرے کے چہرے کے بدلاؤ کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں علی اکبر کس حالت میں. ایک مرتبہ حسین کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے, اے میرے معبود میری اس قربانی کو قبول فرما, اے میرے معبود میرا لگتے جگر گر گیا ہے. ایک مرتبہ فضا سے کہا, فضا ارے در خیمہ اندر خیمے میں جا کر ام لیلا سے کہو کہ ذرا علی اکبر کے لیے دعا کرے, کیونکہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے. ام لیلا نے اپنے آپ کو مسلے میں بٹھایا, اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے اکبر کو حسین مظلوم سے ملا دے. علی اکبر فتح حاصل کر کے واپس لوٹے, خون بہ رہا ہے. ایک مرتبہ زخمی بیٹے کو حسین نے جو دیکھا, کہا بیٹا کیسا محسوس کرتے ہو؟ کہا بابا زبان پر کاٹے پڑے ہیں, اگر دو قطرے آب مل جاتا تو میں بتاتا کہ میں علی مرتضیٰ کا پوتا اور حسین ابن علی کا لخت جگر ہوں. ہاں عزیز حسین نے فرمایا, اے بیٹا میری مظلومیت کا امتحان نہ لو, ذرا اپنی زبان کو میرے منہ میں ڈال دو. علی اکبر نے جیسے ہی زبان کو دانے حسین میں ڈالا, فوراً کھینچ لیا, بابا آپ کا زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. عزیزو روایتیں لکھتی ہیں, حمید بن مسلم لکھتا ہے کہ فرزند زہرا اپنی زبان کو چباتے تھے, کاٹے پڑ گئے تھے. ہاں عزیزو جزاکم ربکم خیر الجزا, اپنی انگشتری مبارک کو اتارا بیٹے کے دہن میں دی, بیٹا اس کو اپنے منہ میں رکھ لو, ابھی تمہارے دادا تمہیں روز کوثر سے سیراب کریں گے. بیٹا میدان قتال کی طرف چلا. عزیزو یہ بیٹا ایسا ہے جو اب واپس آنے والا نہیں ہے, حسین سخت امتحان کی منزلوں میں ہے. اے میرے معبود میرے اس ہدیے کو قبول فرما, میں اپنا سب سے عزیز تحفہ تیری خدمت میں پیش رہا ہوں, اس کے جو میرے جس رفتار و گفتار اور صورت میں تیرے نبی سے مشابہ ہے. علی اکبر میدان قتال میں آئے, ایک شقی نے ایسا نیزہ مارا علی اکبر سے گھوڑے پہ سملا نہ گیا. ہر شہید نے حسین کو نصرت کے لیے پکارا, لیکن حسین اولیاء مقام روایت کرتی ہے, ارے علی اکبر نے اپنے باپ کی مظلومی کا دیکھا اور اپنی نصرت کو نہ بلایا, ارے میرا بوڑھا باپ کس طرح جوا کے لاشے کو اٹھائے گا. ایک مرتبہ سلام کیا, علیکم السلام, حسین نے اپنے جوان بیٹے کی آواز کو لڑکھڑاتے دیکھا, ارے آپ کی کمر تو عباس کی شہادت سے ٹوٹ گئی, اب دیکھنا بھی بند ہو گیا. حسین اندازے سے علی اکبر کی آواز پر چلتے ہیں, ارے یہ اپنے زمانے کا یوسف, ارے یوسف گھر करबला को ढूंढने निकला है, याकूब करबला यूसुफ को ढूंढ रहा है। जमीन पर ठोकरे खाते हैं, आवाज देते जाते हैं, ऐना अली अकबर, ऐना अली अकबर। एक मर्तबा बेटे ने जब देखा बाप की आवाज करीब है, या बाबा इलैया इलैया या बता। एक मर्तबा हुसैन पहुंचे, अरे मेरे लख्त जिगर क्या बात है, ये सीने पर हाथ क्यों रखा हुआ है। कहा बाबा कुछ नहीं, अरे मेरे लाल बताओ क्या बात है, क्या आखिरी वक्त में भी अपनी मुश्किल को बाप से नहीं कहोगे। हुसैन इम्तिहान पर इम्तिहान, जवान बेटा जख्मी सामने पड़ा हुआ एड़िया नकड़ रहा है। अली अकबर ने कहा बाबा अरे सीने में एक जख्म लगा है, एक नेजे की अली टूट के अंदर रह गई, जो बहुत तड़पा रही है। अरे हुसैन ने अपनी आस्तीनों को चढ़ाया, अरे मेरे माबूद मेरे मेरे इम्तिहान में कामयाब कर दे। हुसैन इम्तिहान की मंजिलों में है, अपने हाथ को जख्म अली अकबर में डाला, नजब का रुख किया, या अली करबला के अली की मदद कीजिए। अब जो अली का नाम लेके दरवाज को निकाला, अरे बर्ची की अनी के साथ अली अकबर का कलेजा आ गया, बेटा एड़िया रगड़ रहा है। अरे अली अकबर, अरे मेरे बेटे जरा ठहर जा, जरा माँ से मिल ले, जख्मी बेटे को खेमे में पहुंचाना चाहते हैं। आवाज दिया है बनी हाशिम के बच्चों, हुसैन की मदद को आ जाओ। बूढ़ा बाप कड़ियल जवाब को ला रहा है, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गमे आले मोहम्मद के। लाश अकबर की जो मकबर से उठा लाए हुसैन, अरे नौजवान को सबसे अव्वल से उठा लाए हुसैन, अरे चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन, जाबल अब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन। दी सदा लाश पिसरान के ले जा बानो, अरे छिट गया पर्ची से अकबर का कलेजा बानो। देख ले आखिरी दीदार पिसर मरता है, कुछ दमे आंखों में ये नूर नजर मरता है, तो कुछ दम आंखों में ये नूर नजर मरता है, मुंह से बाहर है जबा तशना जिगर मरता है, मुंह से बाहर है जबा तशना जिगर मरता है, दम है सीने में रुका जख्मों से खून जारी है, शहरबानों तेरे घर लुटने की तैयारी है। वसियालम الذين ظلموا ايما قلب ينقلب انا لله وانا اليه راجعون। मातम हुसैन।